एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और मेरे साथ है मेरी सह मेजबान।
नमस्कार। और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हिला सकती है।
हाँ, किताब का नाम है वास्तविक विश्व का एटलस या द एटलस ऑफ द रियल वर्ल्ड।
और ये किसी आम एटलस जैसी बिल्कुल नहीं है, मतलब वो जो हम स्कूल में देखते थे ना, जिसमें बस देशों की सीमाएं और जमीन दिखती थी।
हाँ, ये उससे बहुत आगे जाती है। वो पारंपरिक नक्शे तो कई बार हमें मतलब गुमराह नहीं कर सकते हैं कि दुनिया असल में है कैसी।
बिल्कुल, ये किताब दिखाती है कि अगर हम दुनिया को सिर्फ जमीन के टुकड़ों में न देखकर इंसानी हकीकत के हिसाब से देखें, जैसे आबादी, पैसा, सेहत, तो तस्वीर कितनी बदल जाती है।
और आज के समय में ये बहुत जरूरी भी है ना? हम सब ग्लोबल इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन की बातें करते हैं।
हाँ, और ये किताब इन्हीं मुश्किल चीजों को समझने का एक बिल्कुल नया विजुअल तरीका देती है। आंकड़ों को कहानी बना देती है ये।
तो फिर देर किस बात की? चलिए पहले जानते हैं कि इस अनोखी किताब के पीछे कौन लोग हैं।
हाँ, ये कोई एक लेखक का काम नहीं है, तीन लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। पहले हैं डैनियल डॉर्लिंग।
डैनियल डॉर्लिंग ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और सोशल ज्योग्राफर हैं, मतलब समाज और भूगोल के रिश्ते, खासकर असमानता जैसे मुद्दों पर इनकी पकड़ है।
सही। और ये आंकड़ों को तस्वीरों में मतलब विजुअलाइज करने में माहिर माने जाते हैं।
फिर दूसरे हैं मार्क न्यूमन। ये एक फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञानी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के एक्सपर्ट।
कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स यानी ऐसी चीजें जहां बहुत सारे हिस्से एक दूसरे को अजीब अनजाने तरीकों से प्रभावित करते हैं। इनका खास काम ये है कि इन्होंने ही वो गणित, वो एल्गोरिथम बनाए जिनसे ये खास नक्शे बनते हैं,
जिन्हें कार्टोग्राम कहते हैं ना?
हाँ, कार्टोग्राम। तो न्यूमन की वजह से नक्शों में वो साइंटिफिक सटीकता है।
और तीसरी हैं अन्ना बारफोर्ड। ये भी एक सोशल ज्योग्राफर है और इनका फोकस ग्लोबल डेवलपमेंट यानी वैश्विक विकास पर रहा है।
तो वो आंकड़ों के पीछे की इंसानी कहानी, समाज पर उसका क्या असर हो रहा है, उस पहलू को मजबूत करती हैं।
क्या गजब का कॉम्बिनेशन है, भूगोल, भौतिकी, समाजशास्त्र।
बिल्कुल, डॉर्लिंग की सामाजिक समझ, न्यूमैन की तकनीकी महारत और बारफोर्ड का मानवीय नजरिया, इसी वजह से ये एटलस इतना प्रभावशाली है। ये सिर्फ नक्शे नहीं है, ये आंकड़ों से कहानी कह रहे हैं।
तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, मतलब किस बुनियाद पर ये पूरी किताब टिकी है?
देखिए, सीधी सी बात ये है कि दुनिया को सिर्फ जमीन के हिसाब से नापना हमें पूरी कहानी नहीं बताता। जो नक्शे हम बचपन से देखते आए हैं, जैसे वो मर्केटर प्रोजेक्शन वाला।
हाँ, जिसमें ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा दिखता है।
वही, वो इसलिए होता है क्योंकि गोल धरती को चपटे कागज पर लाने में शेप बिगड़ जाता है और नतीजा ये होता है कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे इलाके असल से कहीं ज्यादा बड़े और अहम दिखने लगते हैं नक्शे पर।
और ये किताब इसी सोच को तोड़ती है। इसका मकसद है उन चीजों को दिखाना जो आम नक्शों में छिप जाती हैं, समाज, अर्थव्यवस्था, आबादी के पैटर्न।
इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं कार्टोग्राम तकनीक का। इसमें क्या होता है कि किसी देश का साइज उसकी जमीन से तय नहीं होता, बल्कि किसी खास आंकड़े से तय होता है।
जैसे
मान लीजिए आबादी, तो जिस देश की आबादी ज्यादा वो नक्शे पर उतना ही बड़ा दिखेगा।
या फिर मान लीजिए दौलत यानी GDP, तो अमीर देश फूलकर बड़े हो जाएंगे।
अच्छा, तो मतलब अगर आबादी वाला नक्शा देखें तो भारत और चीन तो एकदम दैत्य जैसे दिखेंगे।
बिल्कुल, और रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो जमीन में इतने बड़े हैं वो शायद सिकुड़कर पतले से रह जाएं।
और दौलत वाले नक्शे में अमेरिका, यूरोप खूब मोटे ताजे दिखेंगे और शायद पूरा अफ्रीका महाद्वीप पिचक सजाए। हाँ बिल्कुल, ये तुरंत आपको दुनिया का एक बिल्कुल अलग नजारा देता है। ये किताब हमें इसी सफर पर ले जाती है। पहले जाने पहचाने नक्शे दिखाती है, फिर धीरे धीरे दिखाती है कि इंसानी नजरिए से दुनिया कितनी अलग है।
और इसमें सिर्फ आबादी या दौलत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है ना?
अरे हाँ, बहुत कुछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, हम कितने संसाधन इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण पर क्या असर डालते हैं। करीब 300 से ज्यादा अलग अलग आंकड़ों पर आधारित नक्शे हैं इसमें। ये सिर्फ एटलस नहीं, ये एक तरह से 21वीं सदी की इंसानियत का पूरा लेखा जोखा है।
वाह, तो चलिए कुछ खास नक्शों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत जनसंख्या से करें, वो शायद सबसे बुनियादी है।
हाँ, और शायद सबसे चौंकाने वाले भी। जब आप दुनिया को कुल आबादी के लिहाज से देखते हैं तो जैसा आपने कहा, एशिया एक भीमकाय महाद्वीप बन जाता है।
चीन और भारत ही मिलकर दुनिया का बड़ा हिस्सा घेर लेते होंगे,
एक तिहाई से भी ज्यादा। और वो देश जो जमीन के मामले में इतने बड़े हैं, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो बिल्कुल पतली पट्टियों जैसे दिखते हैं। ये हमारी उस सोच को सीधी चुनौती है कि कौन सा देश बड़ा है या पावरफुल है। ये दिखाता है कि इंसानों का वजन कहाँ है दुनिया में।
और सिर्फ अभी की आबादी नहीं, भविष्य का भी अंदाजा मिलता होगा, जैसे आबादी कहाँ बढ़ रही है।
हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के नक्शे हैं, उसमें अफ्रीका महाद्वीप एकदम फूल जाता है। ये उसकी भविष्य की डेमोग्राफिक ताकत दिखाता है। और वहीं यूरोप, जापान सिकुड़ जाते हैं, जो उनकी बूढ़ी होती आबादी और कम जन्मदर की कहानी कहता है।
अब जरा पैसे की बात करें, धन और गरीबी के नक्शे, यहाँ तो असमानता साफ दिखती होगी।
बहुत ज्यादा। जब आप दुनिया को जीडीपी के हिसाब से देखते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका, खासकर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, ये इतने ज्यादा फूल जाते हैं कि बाकी दुनिया उनके सामने बोनी लगती है।
अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तो शायद नजर ही ना आए ठीक से,
लगभग गायब ही हो जाते हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी में पावर किसके पास है, इसका नंगा सच दिखाता है।
और इसका ठीक उल्टा होगा गरीबी का नक्शा, जैसे वो लोग जो बहुत कम पैसे में गुजारा करते हैं।
हाँ, मान लीजिए $2 प्रतिदिन से कम पर जीने वालों का नक्शा, उस पर भारत, चीन, अफ्रीका के कई देश विशालकाय हो जाते हैं और अमीर देश एकदम से सिकुड़ जाते हैं।
इन दोनों नक्शों को बस साथ साथ रखकर देख लो तो पूरी कहानी समझ आ जाती है वैश्विक असमानता की।
बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है मन में, क्या इस तरह नक्शों को सिकोड़ना या फुलाना, क्या ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये भी भ्रामक नहीं है?
ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब के लेखक भी ये मानते हैं। उनका तर्क ये है कि हर नक्शा किसी न किसी तरह से सच्चाई को बदलता है, कोई भी नक्शा परफेक्ट नहीं हो सकता।
हाँ, वो गोल धरती को चपटा करने वाली बात।
वही पारंपरिक नक्शे जमीन का आकार सही दिखाने के चक्कर में बाकी सब बिगाड़ देते हैं। ये कार्टोग्राम जानबूझकर जमीन का आकार बिगाड़ते हैं ताकि वो मानवीय या सामाजिक सच्चाई को सामने ला सके। और क्या वो सच हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद कर रहा है?
बात तो सही है। अच्छा, अब स्वास्थ्य के नक्शों को देखें जरा। जीवन प्रत्याशा, यानी लोग औसतन कितना जीते हैं,
इसमें तो जापान, स्विट्जरलैंड जैसे देश बड़े दिखते होंगे।
हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी, और वहीं अफ्रीका के कई देश, खासकर सब सहारन अफ्रीका, जहाँ बीमारियाँ, गरीबी ज्यादा है, वो लगभग अदृश्य हो जाते हैं। ये दिखाता है कि जीने का जो मूल अधिकार है, वो भी दुनिया में कितना बटा हुआ है।
और शायद सबसे ज्यादा असर करने वाले नक्शे शिशु मृत्यु दर वाले होंगे।
उफ हाँ, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतें कहाँ सबसे ज्यादा होती हैं? इस नक्शे पर अफ्रीका और दक्षिण एशिया इतने बड़े हो जाते हैं कि दिल दहल जाता है।
और विकसित दुनिया,
वो इतनी छोटी हो जाती है कि दिखती भी नहीं। ये जब आंकड़ा नक्शे में बदलता है ना, तो उसकी भयावहता का एहसास कहीं ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि जो एक जगह एक दुर्लभ ट्रेजेडी है, वो दूसरी जगह रोज की सच्चाई है।
सच में झकझोर देने वाला है। आखिर में पर्यावरण वाले नक्शों की बात करें, जैसे कार्बन उत्सर्जन।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। कार्बन उत्सर्जन का नक्शा देखिए, इसमें वो देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगाई, अमेरिका, यूरोप, जापान, वो विशालकाय दिखते हैं,
क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी अब तक।
बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो देश जो क्लाइमेट चेंज के असर से सबसे ज्यादा झूंझेंगे, यानी विकासशील देश, वो इस नक्शे पर बहुत छोटे दिखते हैं। ये क्लाइमेट जस्टिस की जरूरत को बहुत पावरफुल तरीके से सामने रखता है।
ये भी दिखाता है कि संसाधन इस्तेमाल कौन कर रहा है और उसका बोझ कौन उठा रहा है। ये अक्सर अलग अलग जगह होता है।
हाँ, जैसे तेल कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है, उसका नक्शा देखो तो अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया सूझे हुए दिखते हैं। लेकिन तेल है कहाँ सबसे ज्यादा, उसका नक्शा देखो तो मिडिल ईस्ट हावी है। ये जो असंतुलन है, ये भी इन नक्शों से साफ पता चलता है।
तो इन सब अलग अलग नक्शों और आंकड़ों से अगर हम बड़ा सबक या मुख्य संदेश निकालना चाहें तो क्या होंगे?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक तो यही है कि हम दुनिया को जिस भौगोलिक नजरिए से देखते हैं, वो हमारी सामाजिक समझ पर बहुत गहरा असर डालता है।
हाँ, मतलब जिस तरह हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, वो सीधे तय करता है कि हम किसे या क्या जरूरी मानते हैं। पारंपरिक नक्शे, क्योंकि वो जमीन पर फोकस करते हैं, वो अनजाने में एक खास तरह का वर्ल्ड व्यू हम पर थोपते हैं,
जो अक्सर पुरानी कॉलोनियल ताकतों का नजरिया होता है।
बिल्कुल, जैसे हम भारत में भी सोचते हैं, राज्यों को उनके साइज से जानते हैं, पर ये नहीं सोचते कि आबादी के हिसाब से या इकोनॉमी के हिसाब से उनका वजन कितना अलग है। ये किताब याद दिलाती है कि भाई नक्शे न्यूट्रल नहीं होते।
सही कहा। दूसरा बड़ा संदेश है कि ग्लोबल असमानता को सिर्फ आंकड़ों से समझना काफी नहीं है, उसे महसूस करने के लिए हमें नए तरीकों की जरूरत है।
हाँ, हम रोज अखबार में पढ़ते हैं गरीबी के आंकड़े, बीमारी के आंकड़े, पर वो नंबर लगते हैं ठंडे।
लेकिन जब आप दौलत का या सेहत का कार्टोग्राम देखते हैं तो वो असमानता सिर्फ एक नंबर नहीं रहती, वो एक दिखने वाली, महसूस होने वाली हकीकत बन जाती है।
जैसे भारत में ही गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों लोग हैं, ये जानना एक बात है, पर उस आंकड़े को नक्शे पर एक विशाल इलाके की तरह देखना, वो अलग असर करता है।
ये डेटा विजुअलाइजेशन की इमोशनल पावर है।
तीसरा, ये किताब दिखाती है कि दुनिया एक जुड़ी हुई सिस्टम है, लेकिन ये जुड़ाव बहुत असंतुलित है। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, पैसा, पर्यावरण, ये सब अलग अलग डब्बे नहीं है।
हाँ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कार्बन उत्सर्जन का नक्शा क्लाइमेट चेंज के असर के नक्शे से जुड़ता है, वो फिर सेहत और लोगों के विस्थापन से जुड़ता है।
ये हमें समस्याओं को टुकड़ों में देखने के बजाय सिस्टम की तरह सोचने पर मजबूर करता है। जैसे अपने आ ही कहीं सूखा पड़ता है तो वो सिर्फ मौसम की बात नहीं, वो पानी के मैनेजमेंट, खेती की पॉलिसी, फिर शहरों की तरफ पलायन, सबसे जुड़ा है।
और चौथा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये कि आंकड़ों को इस तरह दिखाना एक तरह से ज्ञान को डेमोक्रेटाइज करना है, मतलब आम लोगों तक पहुंचाना।
हाँ, ये कार्टोग्राम मुश्किल ग्लोबल जानकारी को आसान बना देते हैं। पहले जो आंकड़े सिर्फ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में होते थे, अब उन्हें कोई भी देख और समझ सकता है।
इससे आम बहस ज्यादा जानकारी के साथ हो सकती है। ये एक नई तरह की ज्योग्राफिकल लिटरेसी, मतलब भौगोलिक साक्षरता की मांग करता है, जो सिर्फ देश राजधानी रटने तक ना हो बल्कि उसके इंसानी पहलुओं को भी समझे।
अच्छा, आपने कहा कि ये किताब विजुअल ज्यादा है, तो क्या इसमें ऐसे कोई कोट्स या यादगार बातें कम हैं, या कुछ ऐसे मूल विचार हैं जो बार बार आते हैं?
हाँ, सीधे कोट्स शायद कम हों, लेकिन कुछ कोर आइडियाज हैं जो बहुत पावरफुल हैं। जैसे एक बात जो लेखक कहते हैं कि सभी नक्शे कुछ हद तक सच को बदलते हैं, लेकिन कुछ नक्शे दूसरों से ज्यादा बदलते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब वही कि हर नक्शा कुछ दिखाता है, कुछ छुपाता है। कोई भी नक्शा 100% सच नहीं हो सकता। पारंपरिक नक्शे जमीन को अहमियत देकर इंसानी हकीकत छुपाते हैं,
और कार्टोग्राम्स इंसानी आंकड़ों को अहमियत देकर जमीन का आकार नजरअंदाज करते हैं।
बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं कि हम पक्षपात खत्म करें, बल्कि ये कि हम ऐसा नजरिया चुनें जो इंसानियत और न्याय को बेहतर दिखाए।
एक और विचार जो शायद उभरता है वो है कि जब आप दुनिया को जमीन के हिसाब से देखते हैं तो आप उसे शायद वैसे देखते हैं जैसे पुराने जमाने के शासक देखते थे कब्जा करने के लिए।
हाँ, और जब आप दुनिया को आबादी के हिसाब से देखते हैं तो आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो असल में जी जाती है, इंसानों से भरी हुई।
ये तो सीधी चोट है पारंपरिक नक्शों की विरासत पर। ये कह रहा है कि हमें ह्यूमन सेंटर्ड ज्योग्राफी चाहिए, जहां नक्शे इंसानों की कहानी कहें, ना कि सिर्फ जमीन की।
बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे दिमाग में जो दुनिया की तस्वीर है, कहीं वो पुरानी सोच का नतीजा तो नहीं।
और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाला विचार ये है कि दुनिया में जो असमानता दिखती है वो कोई कुदरती कानून नहीं है,
वो इंसानी फैसलों और इतिहास का नतीजा है,
और इसे बदला जा सकता है।
हाँ,
ये याद दिलाता है कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी हम इन नक्शों में देखते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास के खेल से बनी है,
और अगर उसे बनाया गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। ये नक्शे सिर्फ ये नहीं दिखाते कि दुनिया कैसी है, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि ये कैसी होनी चाहिए या कैसी बनाई जा सकती है।
ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल ये है कि इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम, हम इन नक्शों और इस सोच का क्या करें?
इसके कई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा में ही सोचिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में।
हाँ, भूगोल, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए अगर इन नक्शों का इस्तेमाल हो तो बच्चों को ग्लोबल मुद्दे ज्यादा आसानी से समझ आएंगे।
बिल्कुल। रटने के बजाय देखने और समझने पर जोर। सोचिए बच्चे दुनिया को सिर्फ पारंपरिक नक्शों से नहीं, इन अलग अलग लेंस से भी देखें, कितना फर्क पड़ेगा।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं, सरकारें, एनजीओज, उनके लिए भी ये बहुत काम का हो सकता है।
हाँ, जब वो कोई डेवलपमेंट प्लान बना रहे हों, या हेल्थ सर्विस पर काम कर रहे हों, या क्लाइमेट चेंज से निपटने की सोच रहे हों, ये नक्शे उन्हें दिखा सकते हैं कि जरूरत असल में कहाँ सबसे ज्यादा है,
संसाधन कहाँ लगाने चाहिए। ये राजनीतिक सीमाओं के बजाय इंसानी जरूरत को देखने में मदद कर सकता है।
मीडिया में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। मुश्किल ग्लोबल कहानियों को सिर्फ टेक्स्ट और नंबर से बताने के बजाय इन विजुअलाइजेशन से ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है।
हाँ, पढ़ने वालों को, देखने वालों को आंकड़ों के पीछे का इंसान दिखेगा।
और हम आप जैसे आम लोग, हमारे लिए क्या?
मुझे लगता है ये हमारी सोच बदल सकता है, दुनिया की खबरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। जब हम किसी देश के बारे में पढ़ें तो सिर्फ उसके साइज के बारे में ना सोचें, उसकी आबादी, उसकी इकोनॉमी के बारे में भी सोचें।
हाँ, और शायद यह हमें सोचने पर मजबूर करे कि हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका दुनिया पर क्या असर पड़ता है। हम ज्यादा जागरूक नागरिक बने
और शायद दुनिया के दूसरे कोनों में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी हमदर्दी भी जगे, एम्पथी जिसे कहते हैं।
तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये कि रिप्रेजेंटेशन, यानी हम चीजों को दिखाते कैसे हैं, वो कितना पावरफुल है।
हाँ,
हम दुनिया को कागज पर या स्क्रीन पर कैसे बनाते हैं, ये सीधा असर डालता है कि हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। पारंपरिक नक्शों ने अनजाने में हमें दुनिया का एक खास, शायद कुछ बिगड़ा हुआ नजरिया दिया है।
और ये एटलस उस नजरिए को ठीक करने, उसे ज्यादा मानवीय बनाने की एक बहुत जरूरी कोशिश है।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो है आंकड़ों को विजुअल बनाने की इमोशनल ताकत।
हाँ, वो बात तो है।
आंकड़े अक्सर ठंडे लगते हैं, बेजान, लेकिन जब वो नक्शे में बदलते हैं, जैसे गरीबी या शिशु मृत्यु दर वाले नक्शे, अफ्रीका या दक्षिण एशिया का वो विशाल रूप, वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता,
वो एक मानवीय त्रासदी का ऐसा रूप बन जाता है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है।
हाँ, वो आपको सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि हमें एक नई, ज्यादा गहरी भौगोलिक समझ की जरूरत है, जो सिर्फ देश, राजधानी जाने तक ना हो, बल्कि दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय सच्चाइयों को समझे।
दुनिया को सिर्फ जमीन के टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि इंसानों के घर की तरह देखना।
इस एटलस ने हमें जनसंख्या, धन और स्वास्थ्य जैसे कई आयामों से दुनिया दिखाई। जरा सोचिए, अगर हम दुनिया का नक्शा अन्य महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के आधार पर बनाते, जैसे कि खुशी सूचकांक, लैंगिक समानता या शायद भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों के आधार पर, तो वो दुनिया कैसी दिखती
और ये हमारी वैश्विक प्राथमिकताओं को कैसे बदल सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।